ओम शांति। 20 मार्च 2017 की अभिव्यक्त मुरली। पहला प्रश्न, बाप दादा धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? बाप दादा धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? क्यों धीरे धीरे बोल रहे हैं? क्योंकि अव्यक्त से व्यक्त में आए, इसलिए। क्योंकि मास्टर ऑफ साइलेंस है, साइलेंस ओशन ऑफ साइलेंस है, क्या अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराने के लिए धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बुद्धि में छप जाए। और ऊपर ले जाने के लिए और बाप दादा धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? धीरे क्यों बोलता है? स्वरूप में टिकने के लिए, खुद टिकाने के लिए। और धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? ताकि समझ में आए। स्पीकर जो होता है, यदि वो बहुत फास्ट बोले तो ऑडियंस समझ नहीं पाती है। एक स्पीकर जब बहुत फास्ट बोलता है तो ये दिखाता है कि नर्वसनेस है, डर है, कॉन्फिडेंस कम है। हाँ स्पीकर जो बोल रहा है वो स्पीकर ने स्लो ही बोलना है। जो फास्ट बोलने वाले स्पीकर होते हैं उनको तो ठीक लगता है, पर ऑडियंस को बहुत सारी बातें मिस हो जाती है। तो एक कारण तो ये भी है स्पीकर का। और वो जो कहता है उसका अनुभव कराना चाहता है, उसको हम विजुअलाइज कर सके, देख सके, अनुभव कर सके। अगर वो फास्ट बोला गया तो कैसे उसका अनुभव करा सकेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, वो जो कह रहा है शब्दों के बीच में, वाक्यों के बीच में जो पॉज है, जो अंतराल है, जो गैप है, उसमें कह रहा है कुछ। शब्दों के बीच में जो अंतर है, जो निस्वर स्थान है, वहां वो कुछ कह रहा है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस के लिए वो ये कह रहा है। और राज की बात वो बता रहा है, अगम निगम के भेद खोल रहा है, रहस्य उद्घाटन कर रहा है, क्या बोल रहा है। वह व्यक्त नाद, वह आवाज जो आज तक किसी ने नहीं सुनी, वो आवाज तक जब धरती पर उतरती है तो आवाज तीव्र गति से, फास्ट गति से नहीं हो सकती। और किस धाम से वो पधार रहा है? शांति धाम से, ओशन ऑफ साइलेंस वो खुद है, लैंड ऑफ साइलेंस से वो आ रहा है। उस लैंड ऑफ साइलेंस का साइलेंस उसके अंदर समाया हुआ है, उसको तो वैसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने साइलेंस से कहता है, उसका जो स्पीच है, उसका जो भाषण है, वो स्पीच ऑफ साइलेंस है। वो अपने साइलेंस से जो कह सकता है, वो बोल में आने के लिए तो मनुष्य की भाषा है ना, भगवान की भाषा बोल है क्या? इसके लिए, उनके लिए वो बोल रहा है। इसके लिए वो जो बेहद का साइलेंस बेहद है, शब्दों में हद है, शब्द अपूर्ण है, भाषा अपूर्ण है। शब्द कहो, भाषा कहो, वो वाली चीज कभी भी व्यक्त नहीं कर सकती। आज के लिए नहीं, कल के लिए। तो भाषा भाषा कभी भी वह व्यक्त नहीं कर सकती है जो वास्तव में है, और वो धीरे धीरे क्यों बोल रहा है, इसका क्या उदाहरण दिया जाए? क्योंकि जो भी उदाहरण हम देंगे वो इस संसार के होंगे, जिनके भी उदाहरण देंगे होंगे वो मनुष्य के होंगे, कि इसने कम बोला, इसने धीरे बोला, ये चुप रहा, वो सारे ही मनुष्य है। तो उसका जो बोल है वो अव्यक्त बोल है, उसके जो बोल है वो अव्यक्त धाम से आए हुए बोल है, उसके जो बोल है वो डीप साइलेंस से निकल रहे हैं, उसके जो बोल है वो साइलेंस, वह निराकार साइलेंस एक साकार शब्द का रूप ले रहे हैं, और जैसे कहा वो अनुभव कराना चाहता है, उस स्वरूप में स्थित कराना चाहता है। हर शब्द का अर्थ, भावार्थ, सब कुछ वो अनुभव कराना चाहता है। बाकी तो वो ऐसा भी कर सकता है कि तन में आकर, किसी के तन में आकर सारी मुरली लिखा दे और बाद में कोई भी पढ़ ले संदेश आ जाए, जैसे संदेश में होता है वैसे लिख ले पूरा कोई और बाद में सुना दे, पर वो जो सुनाने वाला बैठेगा फिर इतनी ऑडियंस नहीं होगी, क्योंकि कौन सुना रहा है? जब भी कोई वाक्य सुनाए जाते हैं वो कौन सुना रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक योगी उसी महावाक्यों को सुनाए और एक भोगी सुनाए, प्रभाव किसका है? स्पीकर का है, वक्ता का है, उसकी स्थिति का है, उसके योग बल का है, उसके साइलेंस का है। एक तपस्वी जब बोले तो वाणी में प्रभाव है, एक भोगी संसारी व्यक्ति अगर उसी चीज को बोले तो उसका वो प्रभाव नहीं है। हमको याद है बहुत सालों पहले हॉस्पिटल में एक बहन आए थे जो कि प्रोफेसर थे हिंदी के, और अभी भी ज्ञान में आए थे 10 दिन से। तो हॉस्पिटल में जो क्लास चलता है वहां पर बाबा का जो कमरा है वहां पर शाम का एक क्लास, तो एक बार किसी ने उनसे कहा कि आप आज मुरली सुनाओ, रोज मुरली संडली पर बैठ के सुनाते हैं ना वहां पर शाम को। तो उसने कहा था नहीं, मैं नहीं कर सकती, वो पावर नहीं है, भाषा तो जानती हूँ, प्रोफेसर है हिंदी की, परंतु वहां बैठने का बल, साहस, शक्ति, पावर नहीं है। तो क्यों वो धीरे धीरे बोल रहा है? क्योंकि उसे साइलेंस सिखाना है। क्यों धीरे धीरे बोल रहा है? क्योंकि उसे पेशेंस सिखाना है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो वो शिक्षा देता है उसका वो खुद ही स्वरूप ना हो तो फिर क्या है उसकी शिक्षा बोल के लिए? कम, धीरे और मीठा, और वो खुद ही ना बोले तो कौन मानेगा उसकी बातों को? वो खुद एक तरफ कह रहा है कम, धीरे, मीठा, और वो खुद ही कम ना बोले, नहीं कम तो वो बोलता नहीं पर अगर वो धीरे ना बोले, धीरे धीरे टप 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 झरता है अमृत, एक एक शब्द अमृत की भांति है, एक एक शब्द में गहराई है, एक एक शब्द उस अव्यक्त स्थिति की ओर ले जाने वाला है, एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में बल है, शक्ति है, और वो सारे ही शब्द, सारे ही वाक्य किस उसमें देहभान स्पर्श लेश मात्र भी नहीं, डिटैच्ड है वो, फुल डिटैचमेंट के साथ बोला जा रहा है। ये भी एक कारण है कि उसमें प्रभाव है और वो ऐसा कह रहा है, और दूसरा वो पूरे ऑडियंस को अपने कब्जे में लेना है उसको अगर जोर से बोले और किसको समझना है तो कैसे होगा? वो बोलते बोलते ही योग करा रहा है, योगा मास्टर है ना, वो तो सिखाएगा भी ना, योग टीचर है वो, उसके कर्तव्य वहां पर प्रकट हो रहे हैं उसके बोल में, वो बाप है, तो उसके बोल में बाप की वो सारी भावनाएं हैं, वो माँ है, टीचर है, फ्रेंड है, साजन है। तो उसके एक एक बोल में, उसके एक एक शब्द में वह भासना वो दे रहा है, वो भाव वो प्रकट करा रहा है, वो एक सृजन कर रहा है वहां पर। उसके शब्द नई सृष्टि को जन्म दे रहे हैं। तो वो शब्द इतने कम है, इतने शक्तिशाली है। प्रश्न है, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? अभी उसका नहीं, धीरे तो पहले से ही बोलता है। शक्ति को ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफरेंस। उसका एक कार्य वो भी है कि वो बोलते बोलते अगर फास्ट बोले तो शक्ति ट्रांसफर थोड़ी की जा सकती है। धीरे धीरे शब्द शब्द में, एक एक शब्द में जादू है, एक एक शब्द में पावर है, और उस पावर को वो ट्रांसफर कर रहा है एक एक आत्मा में। और एक उसका लक्ष्य है बोलने का, आत्माओं को जागृत करना, जगाना, स्मृतियों को जागृत कर रहा है वो। उसे पता है सामने जो बैठे है ये वही देवी देवता है, सब भूले हुए हैं, सब सोए पड़े हैं, सबकी स्मृतियां लोप हो गई है। तो वो एक लक्ष्य उन स्मृतियों को जगा रहा है वो। वो सबकॉन्शियस के बेड से, सबकॉन्शियस के तल से उन स्मृतियों को जागृत कर रहा है। उसके शब्द जो है वो वहां तक पहुंचने वाले हैं, चेतना की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, इन द डेप्थ ऑफ कॉन्शियसनेस। वहां पर जो स्मृतियां है उन स्मृतियों को जागृत कर रहा है। निर्बलों को में बल भरने वो आया है। इसके लिए उसके शब्द धीरे है, सिखा रहा है, टीच कर रहा है, अनुभव करा रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। महात्मा बुद्ध के 27वें उत्तराधिकारी, एक बहुत बड़े बुद्ध थे 27, उसको एक बार साउथ का एक राजा जिसका नाम हन्यतारा ने उसको बुलाया था, क्योंकि उसने सुना था उसकी बहुत महिमा। और ये जो 27वां बुद्ध था वो जैसे बुद्ध की प्रतिभा, शक्ति, कांति थी, वैसी ही उसकी भी ख्याति भी थी। और वो चाहता था कि कुछ सूत्र जो है धम्मपद के, वो खुद मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भले उसके राज्य में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, योगी थे, सब थे, परंतु वो उसकी ये भावना थी कि ये जो है 27वां बुद्ध, इसके मुख से जो शब्द निकलेंगे उसके मुंह से सुनना कुछ और बात होगी। शास्त्र तो उसके पास है परंतु उसके मुख से वो सुनना चाहता था। इसलिए उसका उसने आमंत्रण दिया उसको कि मेरे राज्य में आओ, और आमंत्रण स्वीकार किया गया। राज्य को सजाया गया, नगर को सजाया गया, बहुत ही आदर सत्कार के साथ उस 27वें बुद्ध को वहां नगर में लाया गया और बहुत बड़ी सभा बैठी। और फिर वो समय आया कि जब वो शास्त्र पढ़े, वो जो सूत्र है धम्मपद के वो उच्चारण करे और राजा सुने। राजा बहुत ही आतुर था, परंतु वो जो आया था 27वां बुद्ध, वो अपने साथ अपने एक शिष्य को लेके आया। शिष्य कहो या जो उसकी देखभाल करते, हमारी भाषा में सेवादारी ब्राह्मणी, तो उसको लेके आया था। तो वो भी बाजू में बैठा था, तो वो जो था 27वां बुद्ध बैठ गए और बैठे रहे। और फिर कहा, शास्त्र तो सामने रखा था, अब उनकी बारी थी। उसने कहा अपने शिष्य को दे दिया, उस सेवाधारी को, जो कि भाषा भी ठीक से नहीं जानता था, और उसको कहा कि पढ़ो अब तुम। और वो बैठा रहा, अब क्या कहे, उनको बुलाया है वो उसको कह रहा है, तो सब चुपचाप बैठ के सुनते रहे। अभी राजा ये सोचने लगा अंदर ही अंदर, इससे अच्छे पढ़ने वाले तो मेरे पास कितने हैं, बड़े बड़े विद्वान, मैंने इसके लिए थोड़ी बुलाया था, मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था। और जैसे जैसे वो कभी ग्रामर में मिस्टेक कर रहा था, कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहा था, क्योंकि वो तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं था, व्याकरण और उच्चारण दोनों में गलतियां होती थी उससे नहीं, उसका काम वो शिष्य नहीं था, सेवाधारी था जो उनकी देखभाल करता था। तो वो पूरा एक चला एक दो घंटा। अब कोई जाके उठ के जा भी नहीं सकता है क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति है, उसको बुलाया है और उसी ने कहा पढ़ने के लिए। तो वो राजा उसके पास आए, वो बुद्ध के पास, और उनके कहा कि क्षमा करना पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा पूछो। मैं चाहता था कि आपको वो इसके लिए थोड़ी बुलाया था कि उसको आपने बोलने के लिए कहा, आपको। उसने कहा कि मैं ही तो बोल रहा था। तो बोला मेरी बुद्धि, राजा ने कहा बुद्धि मेरी कम है, बुद्धों के व्यवहार मुझे समझ में नहीं आते, जरा विस्तार से बताइए। तो उसने कहा तुम्हारा सारा ध्यान कौन शास्त्र सूत्र पढ़ रहा है बस उसी के ऊपर था, जबकि मैं यहाँ पर, मैंने आज जो भाषण दिया मेरे जीवन का सर्वोत्तम भाषण है, सर्वोत्कृष्ट भाषण है, मौन में मैंने जो भाषण दिया, श्वास आ रही थी श्वास जा रही थी, ये जो विपाशना में जो बताते हैं ना, केवल श्वास की तरफ ध्यान रखो, जैसे जीवन ऊर्जा आ रही है जीवन ऊर्जा जा रही है, मैं तो अपनी संपूर्ण जागरण अवस्था में बैठा था और बोल रहा था, मेरी जो भाषा थी वो मौन की थी। अगर तुमने इसको सुना होता तो वो शास्त्रों में क्या है, उन सूत्रों में क्या है, ये तुम्हें समझ में आ गया होता। लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, ये तो मनुष्यों के उदाहरण है। भगवान इस बार तो बाबा तो दृष्टि दे रहा था, वो तो बोलने के लिए कहा गया, नहीं तो वो तो दृष्टि देते रहता था एक घंटा भी, और वो दृष्टि से क्या कर रहा था किसको पता। क्या मनुष्य सोच सकते हैं कि वो समय दृष्टि से क्या कर रहा था, क्या देख रहा था, किसको देख रहा था, किन महंताओं को देख रहा था। उसके सामने सभा में बैठे होंगे कुछ लोग जो पहली बार आए, कौन थे वो, बड़े बड़े भक्त, क्या क्या साधनाएं, क्या क्या तपस्या उन्होंने की थी, कैसे कैसे तड़पे थे प्रभु को पाने के लिए, वो आत्माएं सभा में बैठी होगी, उनको देख रहा होगा, उनके जन्मों को देख रहा होगा, क्या उसकी दृष्टि होगी, और उनमें पावर शक्ति भर रहा होगा, उनको अनुभव करा रहा होगा, उन्होंने तो जान लिया होगा, परंतु जो बाकी थे बीच वाले हम लोग, हम सोच रहे थे कि वो बोले, हम उसकी भाषा सुनना चाहते थे, जबकि वो बोल ऑलरेडी रहा था। द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, द लैंग्वेज ऑफ साउंडलेसनेस, द लैंग्वेज ऑफ स्पीचलेसनेस, द लैंग्वेज बियॉन्ड साउंड, वॉइसलेसनेस। अव्यक्त है उसकी भाषा, अव्यक्त है उसके बोल, व्यक्त नहीं, वो तो फिर बोलता है शब्दों द्वारा, परंतु जो शब्दों में आ रहा है वो बहुत कम है जो वो है, और फिर भी जो आएगा उन शब्दों में वो शब्द भी बहुत शक्तिशाली होंगे, परंतु वो जो है वो बेहद है। तो प्रश्न है, बाप दादा धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हरेक को अलग अलग बोल रहे हैं, दिल की बात मन की बात क्या बोल रहे हैं, वह बोल रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं बोला। जिन जिन के प्रश्न अपने मौन से ही वो जवाब दे रहा है, अनुभव करा रहा है, उस अनुभव कराने में ही आत्माओं के प्रश्न को समाप्त कर रहा है। वो जो बोल रहा है उसको समझना उसी चेतना में उसी भाव में स्थित होकर ही समझा जा सकता है, नीचे के तल पर रहकर ऊंची बातें नहीं समझी जा सकती, समझी जा सकती है परंतु अलग अलग। कल की मुरली में था ना, जब तुम ज्ञान में आते हो उस समय बाबा शब्द कहा, उसका अनुभव कुछ और है, जब पहली बार मधुबन में आए उसका अनुभव कुछ और है, बाबा से मिले उसका अनुभव कुछ है, मधुबन में रहे ज्ञान की गहराई में गए जिगरी प्राप्ति का अनुभव किया उस समय फिर बाबा शब्द का उसका अनुभव कुछ और है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग तल पर खड़े रहकर एक ही दृश्य को अलग अलग रीति से देखा जा सकता है। एक जैन फकीर ने लिखा है, जब मंदिर में पहली बार गया तो मंदिर बहुत दूर दिख रहा था, दूसरी बार जब गया तो लगा बहुत नजदीक है, तीसरी बार जब गया तो लगा वो दूर है ही नहीं, मैं वही हूँ, चौथी बार जब गया तो लगा वो और मैं एक ही हूँ। परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस, ये किसका क्या क्या है उस आधार से ही आत्मा देखती है। तो वो जो बोल रहा है उसको समझने के लिए उसी अव्यक्त भाव में स्थित होकर ही उसके बोल समझे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप दादा क्या देखकर हर्षित हो रहे हैं? किसका था? योग युक्त रहकर दूसरों को योग युक्त बनाते हैं। योग युक्त सभा के बीच में योग युक्त है, एकांत में नहीं, जंगलों में नहीं, हिमालय में नहीं, चुपचाप में नहीं, गुफाओं में नहीं, कंदराओं में नहीं, वनों में नहीं, खेतों खलियानों में नहीं, शहर में, बीच में, सबके बीच में रहकर जो योग युक्त है और दूसरों को क्या कर रहे, योगी तो बना रहे, ये देखकर वो हर्षित होता है। योगी बच्चे उसे बहुत अच्छे लगते हैं, खुश हो जाता है उसका दिल। योगी को देखते ही जो विषयों से ऊपर है, देह भान से ऊपर है, देह के नीचे तल पर जो नहीं है, चार चक्रों में जो विचरण करते हैं, नीचे के तीन चक्रों में नहीं, बाबा मुरलियों में कहते ना सात मंजिला इमारत, मनुष्य की चेतना सात मंजिला इमारत है, नीचे के चक्रों में जो विराजमान है उनको देखकर वो खुश नहीं होता है, जो चार ऊपर के चक्रों में है उनको देखकर खुश होता है, और जिनके सातों ही चक्र खुल गए हैं, शास्त्र जिसे कुंडलिनी कहते, शरीर में ऐसे वो चक्र नहीं है, एनाटॉमी में अगर शरीर को काटा जाए, डिसेक्शन किया जाए तो वो चक्र नहीं मिलेंगे, ये आध्यात्मिक चक्र है, सारे आध्यात्मिक भाषा है, ऐसे कोई यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये चक्र नहीं है, उसकी चर्चा आगे करते हैं। तो वो हर्षित होता है उनको देखकर जो योगी है, जो तपस्वी है, वो जो आत्माभिमानी है, देह से डिटैच है, अशरीरी है, अव्यक्त है, देह और देह के बहन से परे रहते हैं, संसार से उपराम रहते हैं, साक्षी है इस संसार को, अनलिमिटेड स्क्रीन में ये सारा क्या चल रहा है, श्याम भाई पपेट शो, तो श्याम भाई का टॉपिक है फ्राइडे का इंग्लिश टॉपिक, द वर्ल्ड एज अ पपेट शो ऑन द अनलिमिटेड स्क्रीन, The world as a puppet show on the unlimited screen. इस unlimited बेहद के स्क्रीन में यह puppet show. ऐसे जो साक्षी है, जो उसके जैसे है, वो उसे बहुत प्रिय है, जो उसके जैसे है, जैसे अभी मैं हूँ, मेरे जैसा कोई होगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसकी ऐसी likes है, dislikes है, hobbies है, habits है, मुझे ये अच्छा लगता है खाने के लिए, उसको भी अच्छा लगता है, अरे वाह तुरंत दोस्ती तो यहाँ पर भी जो जो उसको अच्छा लगता है और उस दूसरे जो है जिनको वो अच्छा लगता है तो तुरंत दोस्ती कर लेता है उनसे, कमाल है, ऐसे कहता है अपने आप हो जाती है सेलिंग इन द सेम बोट। तो बाप दादा ये देखकर अभी योग की कौन सी प्रैक्टिकल स्टेज बाप दादा देखना चाहते हैं, योग की स्टेजेस संगठित, इस पे आते हैं पहले, ये प्रश्न पे चलते हैं, संगठित योग के क्या क्या फायदे हैं। ये 30 प्रश्न है, एक दिन में 7 पूरे करेंगे तो कम से कम होने चाहिए, तो मुश्किल ही लगता है। तब तक नहीं, ये 5 दिन में पूरा करना है। फ्राइडे को इंग्लिश टॉपिक फ्राइडे को रहेगा, फ्राइडे को भी हम यही कहेंगे। सैटरडे को एक बहन को दिया है 71 की मुरली, 29th की, और संडे के लिए हिंदी टॉपिक नागेश भाई ने बहुत दिनों से नहीं किया है ना इधर, तो संडे के लिए हिंदी टॉपिक। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, ये असंतुष्टता के रिलेटेड टॉपिक है। जहां जहां भूखा जाता है वहां वहां अपने आप सूखा पड़ जाता है। टोली लेने जाओ तो टोली खत्म। पानी तो सबको बड़ा बड़ा आम, हम गए तो छोटा सा आम। तो असंतुष्टता का भाव, इसका शब्द शाब्दिक अर्थ भी देखिए पहले। तो ये तो भाग्य के लिए लिखा है कि जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जहां जाते हैं उनको उनके सामने ऐसा ही होता है, सूखा हो जाता है। परंतु हम इसे आध्यात्मिक भाषा में या यहाँ पर जिनके अंदर वो संस्कार है असंतुष्टता का, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। तो संगठित योग के क्या क्या फायदे हैं? कलेक्टिव योग का तो ये तो सबसे लास्ट वाला रखो पॉइंट, कि दूसरे ये भय के कारण है। कि दूसरे पूछे भाई, हाँ जिसका लगता नहीं है उसको लग जाएगा, संगठन का बल मिल जाएगा, वो एक प्रवाह होता है वहां पर। क्योंकि देखो 10 आत्माएं हैं, अगर वो 10 आत्माएं, चलो मन कितना भी भटक रहा है पर लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं एक में, देहभान में तो नहीं है। जो देहभान उधर मार्केट में है, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, वो स्थानों में कैसे देहभान के वाइब्रेशन से, वो सारे विकारी वाइब्रेशन से तो बाहर है, व्यर्थ के वाइब्रेशन से तो बाहर है, विकार व्यर्थ और निगेटिव से तो परे है, ये तीनों से बाहर है। और वहां एक वातावरण है, सभी आत्माएं एक में चित्त को लगाने की का प्रयत्न कर रही है, तो उस वातावरण में जाते उस वातावरण का प्रभाव, तो जिसका नहीं लगता वो लग जाएगा। एक दूसरा पावरफुल योग होगा, क्योंकि एक है अपने कमरे में करना, अकेले में करना, एक है सबके सामने सबके बीच में करना, तो सुस्ती वो सब नहीं होगा, पावरफुल योग होगा। और तीसरा श्रीमद का पालन होगा। और चौथा पावरफुल वाइब्रेशन, वृत्ति से वायुमंडल, वायुमंडल से वातावरण, पावरफुल वाइब्रेशन मतलब यज्ञ सेवा होगी, बहुत बड़ी यज्ञ सेवा है संगठित योग करना। जैसे अभी नीचे प्रोग्राम चालू है, उन आत्माओं को इमर्ज करना जो आई है नीचे, और क्या करना, 3 वरदान दे देना उनको। कल कहा था ना अंग्रेजी क्लास में, एक तो पंख दो दो, पंख दो उनको प्राप्तियों के, दूसरा आंख परखने की आंख, तीसरा प्रत्यक्षता का मक्खन, ये तीनों चीजें दे दो उनको, छाप लग जाए चित्त में, दिमाग में, दिल में। भाषणों से ये काम नहीं होगा, डबल सेवा, कल कहा था ना बाबा ने, चलन से उनको दिखे कि इनको कुछ मिला है, जो इनको मिला और किसी को नहीं मिला। सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्वपूर्ण संतुष्ट, हर्षित, इसकी छाप पड़ जाए। शब्द तो वो भूल जाएंगे, यहां से जाएंगे अपने अपने अखबारों पर लिखेंगे बहुत अच्छा था, परंतु छाप, अनुभव की छाप चेतना में छप जाए, जन जन के लिए 5000 साल पूर्व के संस्कार जागृत हो जाए देवता धर्म के, उसमें से जो भी आत्मा होगी, ये लक्ष्य है हमारा। तो और क्या फायदे है संगठित योग के? सब लोग एक ही लक्ष्य लेकर करें तो उसका बहुत जल्दी प्रभाव होगा, एक ही लक्ष्य के साथ। आपदा आती है उस समय सकाश, सकाश की सेवा है यहाँ पर। और कोई भी विघ्न है, कितना भी बड़ा विघ्न है, उसे निर्विघ्न बनाया जा सकता है योग से। कितनी बार हुआ है, वो दिल्ली में प्रोग्राम जब था यज्ञ के इतिहास में सबने योग किया था, तो वो चेंज कर दिया था उधर। कौन आ रहा था? विदेश से कोई आ रहा था ना, रशिया का। तो इस तरह से जो भी विघ्न आए हैं वो सारे चेंज हुए। एक बार दादी जानकी ने उदाहरण बताया था या किसी और भाई ने बताया था, विदेश में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पहली बार कोई बड़े हॉल में, तो दादी उस हॉल को देखने गई। पहले शाम को प्रोग्राम था शायद, तो पहले पूरे हॉल को दृष्टि देती रही, खाली हॉल कोई नहीं था, पीछे से चालू किया, केवल उस हॉल को दृष्टि, क्या भर दिया होगा उसमें, कौन सी पावर, कौन सी शक्ति, कौन से वाइब्रेशंस। और यहाँ पर जैसे मनसा सेवा के लिए उस दिन कहा था ना, कहीं जाने की प्लेस और टाइम की कोई नहीं बात, कहीं से भी की जा सकती है, कहीं से भी। आई सी अ टेम्पल्स एम एस, इसमें सारे शब्द हैं। किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कहीं से भी की जा सकती है, किसी भी समय पर की जा सकती है। और भी इसके ऊपर चिंतन करें, दूसरों योग युक्त रहकर दूसरों को योग युक्त कैसे बनाएं। जो योग युक्त है स्वतः ही बनाने चालू कर देता है, जो उस साइलेंस की मेन स्ट्रीम में आ जाता है वहीं से वाइब्रेशंस अपने आप फैलने चालू हो जाते हैं। तो योग युक्त बनाना ये पैसिव क्रिया है, योग युक्त बनना ये एक्टिव क्रिया है। एक है सक्रिय, एक है निष्क्रिय। सक्रिय जो क्रिया है एक्टिव, उसके लिए मेहनत है, उसमें एक बार चले गए तो वाइब्रेशंस अपने आप निकलने चालू करते हैं, अपने आप हो जाएगा वो। तो योग युक्त बनाना जो है ये इस पर निर्भर करता है कौन कितना योग युक्त है। अब योग की प्रैक्टिकल स्टेजेस कौन सी बाप दादा देखना चाहते हैं? सेकंड में अशरीरी, वो बातें बताओ जिसकी चर्चा थोड़ी नहीं होती है। निर्विघ्न स्थिति, स्थितियों के नाम है स्टेजेस, अशरीरी अवस्था, एक सेकंड में ये सारी जो चीजें अनुभव कराना, ये नहीं, स्टेजेस, योग की स्टेजेस। योग में कोई बैठा है, अब उसकी कैसे आत्मा ऊपर उड़ने लगती है, विदेही अशरीरी, ये तो विशेषण है सारे स्थितियों के नाम। कैसे एक 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 से, सबसे पहले तो जैसे हम बैठे देह का, संसार का भान, इस संसार के भान से, चिंतन से, विचारों से बाहर। फिर दूसरा इस देह का भान, देह की भूख, प्यास, निद्रा, वो जो देह का जो खिंचाव, वो सबसे थोड़ा सा ऊपर। तीसरा मन का तल, पहले जगत, वर्ल्ड, बॉडी, फिर माइंड। अब माइंड का जो भटकना है यहाँ वहाँ, वो सबसे, वो भटकना माइंड के तल पर रोकना, और फिर चौथी अवस्था में प्रवेश करना, आत्माभिमानी स्थिति। और यहाँ से फिर वास्तव में सच्ची यात्रा जो है योग की, वहाँ चालू होती है, जहाँ संसार का चिंतन समाप्त हुआ, देह का चिंतन समाप्त हुआ, मन में जो भाव, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारे हैं वो एक तरफ हो गए, इनसे भी एक नो माइंड में आके, जैसे हम ये सब मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। और यहाँ से फिर वो जर्नी चालू, मैं आत्मा सूक्ष्म देह में, चाहे सूक्ष्म वतन में जाओ या यहीं रहो। फिर योग अर्थात संबंध, योग टू ज्वाइन, टू कनेक्ट, तो उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करना और वो अनुभव, उसमें भी फिर अलग अलग अनुभव। जैसे कल कहा था ना, 50 लिखे किसी ने, कल का होमवर्क था 50 पॉइंट्स, चलो उस क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आज रात होती है, नहीं तो कल सुबह, संडे की मुरली रिवीजन बाकी है। तो उस परमात्मा के साथ स्वयं को जोड़ना, सूक्ष्म वतन में जोड़ो, या तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देह को भी छोड़कर सीधा परम धाम में एक हो जाना, उससे जुड़ जाना। सभी आत्माओं की एक इच्छा यूनियन की होती है, पर वो देह देह का यूनियन में फंस जाते हैं, पर वहां पर प्यास बुझती नहीं है और तीव्र होती है और फ्रस्ट्रेशन। ये तो इस देह को यहीं छोड़कर योग की उस परम अवस्था तक पहुंचना है। ये तो कुछ दूसरी बातें बताई, मुख्य जो बात है इसमें हम जो चक्रों की बात कर रहे थे, बौद्ध धर्म, तंत्र, हिंदू, इनमें इन चक्रों की चर्चा है। सबसे पहले नीचे है मूलाधार चक्र, सबसे नीचे मूलाधार चक्र, इसकी गति क्या है। नीचे के तीन चक्र जो है उनमें एक नियम है और ऊपर के चार चक्र है उनमें एक नियम है। नीचे के तीन चक्रों में नियम है लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे ही खींचते रहता है, एक बार उसका आकर्षण हुआ तो वो और खींचता है, परंतु ये लॉ ऑफ ग्रेविटी ऊपर के चार चक्रों में एग्जिस्ट नहीं करती। ऊपर के चार चक्रों में लॉ ऑफ ग्रेस, लॉ ऑफ ग्रेस अर्थात एक बार ऊपर चला गया मन फिर और ऊपर जाना चाहता है और ऊपर जाना चाहता है, फिर नीचे नहीं आना चाहता। नीचे एक बार, नीचे के चक्रों का नियम है लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे एक बार गया, काम वासना उसमें उत्पन्न हुई तो वो काम को ही काम को ही पूर्ण करना चाहता है, परंतु पूर्ति जीवन भर भी नहीं होती और ही नीचे जाता। जैसे गेंद नीचे सीढ़ी पर फेंको तो वो गेंद नीचे नीचे ही जाता, उसका कोई चांस नहीं है ऊपर जाए। तो सबसे नीचे के तल पर है सैक्रल प्लेक्सस, मूलाधार चक्र। किस चीज को मूलाधार चक्र जो है, ये चारों ही सातों ही चक्र एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव भी ना हो इनएक्टिव भी ना हो। इनएक्टिव हो तो जो नीचे का जो चक्र है मूलाधार, वो स्टेबिलिटी का प्रतीक है। स्टेबिलिटी से भी ज्यादा कहेंगे कि बॉडी से कनेक्शन, सबसे ज्यादा देहभान का चक्र है। जो लोग सारा जीवन उसी चक्र के आसपास घूमते रहते हैं उनमें वो दिव्यता कभी जागृत नहीं होती, वहीं सबसे नीचे के चक्र के ही तल पर सारी गति है, फिजिकलनेस। उसके ऊपर का जो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके थोड़े ऊपर वो काम वासना का प्रतीक है, वहां पर जिनका वो एक्टिव है, एक्टिव कहो या खुला नहीं है, बंद है, वो जीवन भर उसी काम में ही आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसके ऊपर नहीं उठ पाते, वहीं उसका जीवन होता है। सो स्वाधिष्ठान इज अ सेंटर ऑफ सेक्सुअलिटी, उसके थोड़े ऊपर मणिपुर चक्र, बहुत सारे कनेक्शन है, सात चक्र, सात शरीर, पांच तत्व, बहुत अलग 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 एक्सप्लेनेशन है, हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, समय का अभाव है। तो तीसरा जो है वो मणिपुर चक्र, नाभि, ये तीन नीचे के चक्र है। मणिपुर चक्र का संबंध जो बताया गया है वो कनेक्शन विद पीपल, कनेक्टिविटी विद पीपल। तो यहां पर हिंसा, क्रोध, ये सारे यहाँ के हैं। ये तीनों तल जो है नीचे के तल है, सबसे नीचे वाला कंप्लीट फिजिकलनेस, कंप्लीट देह और देह का चिंतन, उसके ऊपर काम, उसके ऊपर संबंध संपर्क कहो या जो क्रोध, नफरत, घृणा, ये सारे उसमें रहते हैं। ये तीनों यदि खुल जाए तो वो काम वहां नहीं रहता, फिर वो फिजिकलनेस से व्यक्ति परे हटता है। जो संसार में अगर आप डिवाइड करो अलग अलग लोगों, जैसे पॉलिटिशियंस जो है वो थोड़ा काम वासना से थोड़े ऊपर उठते हैं, जो काम वाले विकारों वाले वो उसी में फंसे रहते हैं। पॉलिटिशियंस, उनका ईगो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्रोध, वो क्रोध में क्या करेंगे वो सब अनकॉन्शियस लेवल पे है। जैसे अभी अभी हुआ, चप्पल से ही मारा उसको वो अभी वो उसके बाद भी जो कुछ कह रहा है वो अनकॉन्शियस है, उसे पता ही नहीं वो क्या कह रहा है, इसीलिए उस शेखी वगैरह, मतलब उसको लग रहा है मैंने राइट किया, सारा देश सोच रहा है गलत किया, पर उसको लग रहा है कि मैंने सही किया। ये जो जिस तल पर ऑपरेट हो रहा है सब, ये मणिपुर चक्र के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। काम से थोड़ा ऊपर है, काम तो नीचे की ओर खींचने वाला चक्र है स्वाधिष्ठान, और सबसे नीचे तो अज्ञान कहेंगे जिसको, कंप्लीट फिजिकलनेस, मूलाधार। अब थोड़ा यहां से ऊपर आओ, हृदय, अनाहत चक्र। हृदय में अनाहत चक्र है, प्रेम, करुणा, दया, संभाल करना, केयर करना, ये नीचे के चक्र से अभी लॉ ऑफ ग्रेविटी नीचे ऑपरेट करता है, एक चक्र नीचे की ओर, अब यहाँ से जो आत्मा है ऊपर उठ जाती है, जैसे यहाँ पहुंचती है हृदय, फिर यहाँ धर्म की बातें, धार्मिक होना, भक्त, यहाँ प्रेम, करुणा, सोशल सर्विस, सब कुछ यहाँ है, फिर कुछ कुछ यहाँ के प्रिंसिपल ऊपर है, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर उठ जाओ तो यहाँ आते विशुद्ध चक्र गले में, जिनका यह चक्र खुलता है। इसमें दो स्टेजेस है, एक्टिव इनएक्टिव, एक तो एक्टिव हो जाता है, एक इनएक्टिव, एक कभी कभी ओवर एक्टिव भी होता है, तीन स्टेजेस, एक तो बंद रहना इनएक्टिव, फिर एक तो खुल जाना, और तीसरा है ओवर एक्टिव हो जाना। तो यहाँ एक रीति से अच्छा है, पर नीचे के तीन चक्र जब ज्यादा खुलते हैं तो कुकर्म, विकर्म, हिंसा सब कुछ होता है। नीचे के तीन अगर खुल गए, ऊपर के चलो तीन, ऊपर के चार अगर खुल गए तो बहुत अच्छा। खुले तो वो शक्ति बहती है, पूरा फ्लो होती है। तो यहाँ पर जो चक्र है विशुद्ध चक्र, वाणी से संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, जैसे ये धीरे धीरे बोलते हैं, कम धीरे मीठा, और उसी के विरोध में फिर वो जो भी है, आवेश, आक्रोश, द्वेष, घृणा। तो ये जो चक्र है वो कम्युनिकेशन का प्रतीक है। उसके बाद है थर्ड आय, आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी के मध्य में, थर्ड आय कहो, कल की मुरली में था, परखने की आंख, भारतवासियों की परखने की आंख अंधी है, बंद है, अंधे है, परखने की आंख से अंधे है, उनकी परखने की आंख खुल गई है, वहां पर रहकर बाप को जाना पहचाना, बाप के बन गए और आ गए, परंतु यहाँ वाले नहीं जान पाए, पहचान पाए, समझ पाए। तो ये जो चक्र है आज्ञा चक्र, इनसाइट, आज्ञा चक्र इज अ चक्र फॉर इनसाइट। हर एक चक्र का अलग अलग कलर है, रेड से चालू होता है नीचे, अलग अलग कमल की तरह है, नीचे का चार चार पत्ते पंखुड़ियों वाला नीचे का सबसे। तो यहाँ आती है चेतना, यहाँ जब खुलता है तो क्लैरवॉयंस, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये बहुत ऊंची अवस्था है आत्मा की, जो पता चल जाता है क्या हो रहा है। जैसे विदेश में एक व्यक्ति सोया पड़ा था और रात में उसे स्वप्न है, आग लग रही है, आग लग रही है, पानी डालो, पानी डालो, तो लोग उसको उठाए, अरे पानी कहाँ डालो, आग है ही नहीं, ये तुम्हारा स्वप्न है। दो दिन के बाद पता चला कि वो जिस समय ये बोल रहा था उसी समय बहुत 200-300 किलोमीटर पर कहीं आग और लग रही थी, तो वो और वो पानी डालने के लिए कह रहा, तो वो स्वप्न नहीं था, वो विजन था। तो ये जो आज्ञा चक्र जब खुलता है तो दूर की आवाजें हो रही है, दूर क्या हो रहा है वो देखा जा सकता है, क्लायर ऑडियंस, क्लायर वॉयंस, ये सारा होता है। और इसके भी आगे सहस्त्रार चक्र, थाउजेंड पेटल, हजार पंखुड़ी वाला कमल जब खुलता है, तब वो व्यक्ति की जो अवस्था होती है वो सर्वोच्च अवस्था होती है, वो पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाता है, उसकी चेतना जो होती है बहुत ऊंची अवस्था में रहती है, वो प्रिजुडिस, बायस, पूर्वाग्रह सब सबसे, धर्म, जाति, भेद, पूर्व पूरा हमारी भाषा में पुराने संस्कार, विकार, इन सब से परे चला जाता है। तो ऐसे सात चक्र, सात मंजिला ये इमारत, और ये सारे खुल जाए तो फिर योग स्वतः ही, विकार तो नीचे के तीन में ही छूट गए, चौथे से ऊंचा ऊंची अवस्था चालू हो चुकी है। किस किस के खुले हैं? विजुलाइज तो कर सकते हैं कम से कम, चलो खुले ना खुले। हमको एक बार ऐसा अनुभव हुआ था कुछ साल पहले, पहाड़ियों पर एक बार हम जब बैठे थे, तो यह तब यह इस क्लास में हम नहीं आते थे, उसके थोड़ा पहले, तो एक बार जैसे ऐसे अनुभव हुआ, बहुत लंबा समय बैठे, 5-6 घंटे, केवल एकांत था, आबू की ही पहाड़ी थी, और ऐसे अनुभव या विजुअलाइज कहो या भ्रम कहो कि ये जो चक्र है एकदम से कुछ हुआ है उनमें, जैसे कि एनर्जी फ्लो हुई है और जो कार्य करना है वो विश्व के लिए करना है। अब तो हम विजुअलाइज तो कर सकते हैं, ऐसे कोई चक्र है नहीं स्थूल में, परंतु ऊर्जा बहती है और आत्मा में चेतना के तल जो है ऊपर उठता है, वो फिर वह कार्य नहीं करता है जो बाकी आत्माएं देह भान में करती है। कितने हुए आज? पांचवे ओम शांति।